Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare. Aaj, Shri Krishna ki kripa se, hum Srimad Bhagavad Gita yatha roop se paath karenge. Shri Krishna ki kripa, Guru Kripa se milte hai. Hamara param saubhagya hai ki ham Vishwa Vikhyat Srila Prabhupada A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ke charan, ke sharan mein hai. Aur unhone Bhagavad Gita yatharup ka prakashan kiya. Yatharup ka matlab ki bahut Gita vyakak apni kalpana se, apna mat se, Bhagavad Gita ka art likhte hai. Aur Srila Prabhupada, Shri Krishna ka udeshya ke anusa, Bhagavad Gita yatha roop pradan kiya. To Shri Krishna ka udeshya kya hai, kaise samajna hai? To Bhagavad Gita se, Bhagavad Gita, Shri Krishna ne Bhagavad Gita ek vishesh udeshya ke liye Arjun ko bataye. Aisa nahi hai ki Bhagavad Gita ek shastra hai jo kisi bhi vyakti uski vani leke apna mat usko dal sakte. Nahi hai. Shri Krishna ka vishesh udeshya tha Bhagavad Gita kehne se, aur wo udeshya Bhagavad Gita ke shabdon se, jo spasht Bhagavad Gita mein hai, uske anusar Srila Prabhupada Bhagavad Gita yatha roop rachana ki. Aur chunki ye Bhagavad Gita hai, kisi sadharan vyakti ki ukti nahi hai, Bhagavan ki vani hai. Isliye isme Bhagavan arthat Sarva Shaktiman Bhagavan ki shakti hai. Wo kya shakti hai? Inki gyana shakti aur kripa shakti. Bhagavad Gita gyan hai aur Shri Krishna ki kripa se wo gyan samaj jate hai. To wo kripa kaise prapt hoti hai? To yadi ham vinamra bhav se स्वीकार करते हैं कि हम अर्जुन जैसे मोहित हैं और श्री कृष्ण परम ज्ञान प्रदाता है. श्री कृष्ण सब कुछ जानते हैं और भगवान श्री कृष्ण हमको पूर्ण ज्ञान दे सकते हैं. यदि हम इस विनम्र भाव से भगवद गीता का ज्ञान ग्रहण करते हैं, हम अर्जुन जैसे मोह से मुक्त हो सकते हैं और हम हमारा वास्तव धर्म समझ सकते. तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद भगवद गीता यथारूप रचना की और इस भगवद गीता 80 के अधिक भाषाओं में अनुवादित और प्रकाशित है. और इस भगवद गीता यथारूप का प्रचार है. यथारूप का अर्थ तो किसी इसमें किसी का स्वयं का मत नहीं है. भगवान कृष्ण जैसे बोले वैसे उसके अनुसार इस भगवद गीता की व्याख्या होती है. भगवान शक्तिमान है और इस भगवद गीता यथा रूप में शक्ति है, क्योंकि श्री कृष्ण की वाणी से एकदम पृथक, श्री कृष्ण की वाणी एकदम एक ही होते हैं, पृथक नहीं है. श्री कृष्ण जो कहते हैं इसका अर्थ है भगवद गीता यथा रूप में. और श्री कृष्ण की शक्ति प्रकट होते हैं कैसे? इस भगवद गीता का वितरण से. आधुनिक युग में हजार हजार लाखों लाखों भक्त बनाए हैं श्री कृष्ण की वाणी भगवद गीता यथारूप ग्रहण करने से. तो भगवद गीता का प्रथम श्लोक यही है. धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामकां पांडवश्चैव किमकुर्वत संजय। भगवद्गीता में लगभग 700 श्लोक है, 18 अध्याय। प्रथम श्लोक, प्रथम अध्याय में भगवद्गीता का उपदेश का शुरुआत नहीं है। प्रथम अध्याय में वो खाली भूमिका है। तो कैसे भगवद्गीता, कैसे श्री कृष्ण, कौन सी स्थिति में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को भगवद्गीता वाणी प्रदान किया, तो ये महाभारत का वृत्तांत सुप्रसिद्ध है कि पांडव, पांच पांडव और दुर्योधन आदि कौरव, उनके दो फौज कुरुक्षेत्र में आए युद्ध करने के लिए, और उस अवस्थ में अर्जुन जो कौरव पांडव, पांडवों के भीमा और अर्जुन ये दो सबसे शक्तिमान बलवान सैन्य थे, योद्धे थे, तो और अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण थे। तो अर्जुन उनके सामने भीष्म, द्रोणा प्रमुखता, गुरुजन, भाइयों, मित्रों, सब घनिष्ठ मित्रों, बंधुजन देख के बहुत खेद हुए कि यदि हम युद्ध करेंगे तो हमारे सब आत्मीय स्वजन, बंधुगण, मान्य गुरुजन तो मर जाएंगे। और इस अवस्थ में अर्जुन तो युद्ध करने के लिए अस्वीकार किया, और उसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन को अस्वस्थ किया। भगवद गीता ज्ञान प्रदान करने से श्री कृष्ण अर्जुन को अस्वस्थ किया कि अर्जुन का युद्ध करना का प्रयोजन है। तो पहले अर्जुन विमोहित थे, न युद्ध से इति गोविंदम, गोविंदा मैं युद्ध नहीं करूंगा, अर्जुन बोले। और इस प्रसंग में श्री कृष्ण अर्जुन को पूर्ण आत्मज्ञान, भगवत ज्ञान, तत्व ज्ञान बताए। तो पहला श्लोक इस प्रथम अध्याय में धृतराष्ट्र उवाच, भगवद गीता में प्रथम श्लोक भगवान की उक्ति नहीं है, धृतराष्ट्र की उक्ति, भगवान का उपदेश द्वितीय अध्याय से शुरुआत होते हैं। तो प्रथम श्लोक है धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र कौन? दुर्योधन के पिता, उनके मृत भ्राता, पांडु के ज्येष्ठ भाई, जो राजाधिकारी नहीं थे क्योंकि वे जन्म से अंध थे। तो दुर्भाग्यता से वो केवल आंखों में अंध नहीं थे, अपितु उनका आध्यात्मिक ज्ञान बिल्कुल नहीं था, इसलिए वे आध्यात्मिक विचार में भी अंध थे। तो हम सब धृतराष्ट्र जैसे हैं, हमारा आत्मज्ञान नहीं है, हमको आत्मज्ञान नहीं आता, इसलिए हम सब धृतराष्ट्र जैसे हैं। धृतराष्ट्र इस नाम का क्या अर्थ है? वो राष्ट्र को पकड़ना चाहता है। धृतराष्ट्र का अधिकार नहीं था क्योंकि अंध था, तो पांडवों का अधिकार था, राज्य था, परंतु धृतराष्ट्र और विशेषकर दुर्योधन अन्याय से राष्ट्र को पकड़ना चाहते थे। तो बहुत बहुत दीर्घ घटनाएं के पश्चात कौरवों और पांडवों दोनों फौज कुरुक्षेत्र में समवेत एकत्रित हुए, और धृतराष्ट्र जो अंध था उनका सचिव मंत्री संजय से पूछा कि मेरे पुत्रों और मेरे भाई मृत भाई पांडु के पुत्रों वहां जाकर कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र वहां जाकर युद्ध करने के लिए क्या किया, युद्ध किए कि नहीं, यही प्रश्न है। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र ये दो शब्द महत्वपूर्ण है। कुछ लोग कहते हैं कि वो कुरुक्षेत्र का मतलब शरीर है और पांच पांडव का मतलब पांच इंद्रिया है और ये सब भगवद गीता तो ऐसा कुछ नहीं था, कृष्णा जैसे व्यक्ति कोई नहीं था, धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति नहीं था, सब रूपक है। परंतु किस प्रकार का मत है, तो आज तक कुरुक्षेत्र हरियाणा राष्ट्र में है, आज तक बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं और वो रणभूमि जिसमें कुरुक्षेत्र युद्ध था वो आज भी दृश्यमान है। तो कोई प्रश्न नहीं है कि ये भगवद गीता और पूरा महाभारत केवल रूपक है। तो कृष्ण सत्य है, भगवद गीता सत्य है, ये सब इतिहास ये सब घटनाएं हुए 5000 वर्ष के पहले। तो इसलिए हम भगवद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद से लिखी हुई भगवद गीता यथारूप हम पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें कुछ कल्पना नहीं है, कुछ दुर्व्याख्या नहीं है। भगवान जैसे कहते थे, व्यासदेव जैसे हमको दिए है, वैसे श्रील प्रभुपाद हमको दिया है और हम प्रयास करते हैं श्रील प्रभुपाद की कृपा से आप सभी पुण्यात्मा दर्शकों को प्रदान करना। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र बहुत प्राचीन काल से एक धर्म क्षेत्र था। कुरु महाराज जो कौरवों और पांडवों के पिता थे बहुत पीढ़ियों के पहले, तो कुरु महाराज एक बहुत पुण्यशाली राजा थे और इनकी इच्छा से उन्होंने एक वर मिला कि इस कुरुक्षेत्र यज्ञ स्थल होगा और धार्मिक कार्य जो कुरुक्षेत्र उस भूमि में करना है वो उससे महान पुण्य प्राप्त होते हैं। तो उस भूमि चुनी हुई इस युद्ध करने के लिए, परंतु धृतराष्ट्र का संदेह था कि ये धर्म भूमि है और धृतराष्ट्र जानते थे कि पांच पांडव धार्मिक है और मेरे पुत्रों अधार्मिक है, इसलिए वो धार्मिक प्रभाव जो कुरुक्षेत्र में है वो पांडवों के लिए अनुकूल होगा। इसलिए धृतराष्ट्र बोले धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, खाली कुरुक्षेत्र बोलने से तो धृतराष्ट्र का वचन पूर्ण होता, परंतु धर्म क्षेत्र बोले धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र जानते थे कि ये धर्म भूमि है और इसका प्रभाव से पांच पांडवों का विजय होगा। धृतराष्ट्र की इच्छा थी कि उनके पुत्रों का विजय होगा, परंतु उनका हृदय में जानते थे कि वास्तव में मेरे पुत्रों की कोई आशा नहीं है, क्योंकि धर्म रक्षति रक्षतः, जो धर्म परायण है, जो अपना आचरण और व्यवहार से धर्म की रक्षा करते हैं, वे रक्षित होते हैं धर्म के द्वारा। विशेषकर युधिष्ठिर धर्म पुत्र थे, धर्म का मतलब यमराज और युधिष्ठिर यमराज के पुत्र थे और धर्म का मूल स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण, वे धर्म मूर्ति है, इनकी सेवा करना परम धर्म है। श्री कृष्ण यमराज के भी रक्षक है, वे सभी देवताओं के पूज्य है, और पंच पांडव कृष्ण के अति प्रिय है, इसलिए जयस्तु पांडु पुत्रानम येषां पक्षे जनार्दन। विजय की विजय पंच पांडवों का होगा वो निश्चित था, क्योंकि जनार्दन, ये जनार्दन कृष्ण का एक नाम, जनार्दन वो पंच पांडव के पक्ष में थे। जनार्दन ये नाम का दो मुख्य अर्थ है, एक है जो अपना जन को रक्षा करते हैं और द्वितीय अर्थ है जो दुष्ट जन को संहार करते हैं। तो जनार्दन कृष्ण पंच पांडवों के साथ थे, इसलिए दुर्योधन आदि कौरवों की कोई आशा नहीं थी। उनका बल था, उनके साथ भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, जयद्रथ, शल्य जैसे महान महान योद्ध थे। परंतु चूंकि भगवान कृष्ण अर्जुन, युधिष्ठिर, भीष्म, नकुल, सहदेव के साथ थे, इसलिए पूरा निश्चित था कि विजय पंच पांडवों का होगा। तो धृतराष्ट्र संजय से पूछे, धृतराष्ट्र स्वयं युद्ध में शामिल नहीं हो सकता क्योंकि अंध था। तो राजा जैसे थे परंतु अपना घर, अपना राजमहल में रहते थे और दूर से समाचार मिला संजय से। तो संजय उत्तर में द्वितीय श्लोक में धृतराष्ट्र को बोले, संजय उवाच, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो दुर्योधन का गुरु द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य केवल दुर्योधन के गुरु नहीं थे, पंच पांडवों के गुरु भी थे। तो गुरु थे, ब्राह्मण थे, परंतु उनकी विशेषता धनुर्वेद में था, अस्त्र विज्ञान, और उन्होंने पांडवों को भी और कौरवों को भी सिखाया कैसे अस्त्र विज्ञान करना है। वो धनुर्वेद बोलते वेद गुरु का मतलब, ये गुरु शब्द का मुख्य अर्थ है जो हमको ज्ञान देते, विशेषकर जो हमको आध्यात्मिक ज्ञान देते। परंतु सभी विज्ञान, सभी कला में गुरु होना चाहिए सीखने के लिए। आजकल ऐसी पुस्तक मिलते, टीच योर सेल्फ, डू इट योर सेल्फ, परंतु वैदिक संस्कृति में गुरु होना चाहिए, विशेषकर वो उच्च ज्ञान और सूक्ष्म ज्ञान जिसमें सर्वोच्च ज्ञान है आध्यात्मिक ज्ञान, उसको सीखने के लिए गुरु से सीखना चाहिए। तो गुरु और शिक्षक, ये दो शब्द तो एक ही तात्पर्य नहीं है। शिक्षक, शिक्षा देना तो एक व्यक्ति को कुछ पैसा देने से, दूसरों को ट्यूटरिंग ऐसे कर सकते, लेकिन गुरु और शिष्य संबंध में जो है वो बहुत गहरा है। सीखने के लिए वो संस्कृति है कि शिष्य तो पूरा समर्पित होना चाहिए गुरु के चरण में और पूर्ण विश्वास होना चाहिए गुरु में। तो दुर्योधन का अर्थ था स्वार्थ और उनका गुरु द्रोण था, परंतु वास्तव में दुर्योधन किसी का वास्तव शिष्य नहीं हो सकता, क्योंकि उनका, दुर्योधन का उद्देश्य था स्वार्थ। तो गुरु जो भी शिक्षा देते हैं, संगीत की शिक्षा, युद्ध की शिक्षा, विज्ञान की शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, तो साथ साथ धर्म की शिक्षा देते हैं। और धर्म का अर्थ है निस्वार्थ होना। तो दुर्योधन का उद्देश्य स्वार्थ था, इसलिए वे अच्छी तरह द्रोण को गुरु रूप से नहीं मानते थे। तो आजकल भी हम देखते हैं कि वो गुरु शिष्य संबंध में जो होते हैं वो पूर्व काल में जैसे नहीं है। गुरु का मतलब भारी, लघु नहीं है, हल्का नहीं है। तो ऐसे ही दुर्योधन द्रोण को बताए गए, परंतु द्रोण उनका दुर्योधन उनका हा स्वार्थ में, तो केवल स्वार्थ 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 का चिंतन किया था। और इसलिए वो गुरु जो द्रोण जो दुर्योधन को सिखाना चाहते थे, दुर्योधन उसको समझ नहीं पाया। तो इस गुरु शब्द भगवद गीता का द्वितीय श्लोक में आते हैं, और बाद में हम देखेंगे कैसे भगवान कृष्ण, कृष्णम वंदे जगत गुरु, सबके गुरु कृष्ण वास्तव गुरु रूप में अर्जुन को वास्तव ज्ञान प्रदान करते हैं। धीरे धीरे हम सब सुनेंगे भगवद गीता से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।